ओम शांति। नदियों की विशेषता होती है, जिसको गंगा भी कहते हैं, जहां तहां से बहती है, गांव शहर को हरा भरा कर देती है, पीने के लिए जल भी दे देती है और जाकर अंत में सागर से मिलती है। कितना श्रेष्ठ पार्ट है नदियों का, वो है स्थूल पानी की नदियां, और जहां संगम युग पर परमात्मा पिता ब्रह्मा बाबा ने जिनको निमित्त बनाया, ऐसी ये ज्ञान गंगाएं हैं। उसमें से आज एक ऐसी ज्ञान गंगा हम सभी के समक्ष पधारे हैं, जो भी गंगाएं हैं उसमें ये श्रेष्ठ ज्येष्ठ गंगा मानी जाती है। आदरणीय सीता दीदी जी जो अमरावती से पधारे हैं, अमरावती जिला के संचालिका है, अमरावती जिले में जितने भी सेवा केंद्र है आप उसका संचालन करते हैं। बहुत मृदुल निश्चल स्वभाव, मीठी वाणी और सभी को प्यार से पालना देने वाले, ऐसे ये हमारे आदरणीय सीता दीदी जी पिछले 40 वर्ष से ज्ञान प्राप्त किए हुए हैं और 36 साल से ईश्वरीय सेवा में समर्पित है। अभी हम सभी के समक्ष उपस्थित है, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं तालियों के द्वारा।
ओम शांति। आप सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी परम सौभाग्यशाली बाबा के बच्चे मधुबन महासागर में आकर पहुंचे हैं और हम बड़े ही खुश नसीब हैं, और आज आपको और ही खुशी होंगी कि पीछे से आपको और स्थान अच्छा मिला। कहां आकर के बैठे, इंतजार था ना, तो वो भी बाबा सब बच्चों की भाव भावनाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करता है। लगातार इस वरदानी भवन में जो डायमंड हॉल बाबा ने जो बेहद का बनाया, हम सभी बाबा के बच्चे बाबा से बहुत सुंदर मिलन मनाकर भरपूर अपनी झोली को करते हुए जो बाबा ने हम सबको काम दिया है कि अभी हम सबको क्या करना होगा। जैसे पिछले साल की जो बाबा की मुरलियां चली और उस दिन भी बाबा ने बहुत थोड़ा समय, लेकिन बहुत कुछ बाबा हम सबको देकर चले, तो हम कहते हैं ना, दुखों भरी दुनिया में, दुखों भरी इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ संपत्ति नहीं लेकिन संतुष्टता है। तो ऐसी संतुष्टता भरी जीवन का वरदान हम सब बच्चों को बाबा ने दे दिया। अब उसको हम अपने आप में किस तरह से संभाल कर रख सकते हैं, ये तो अपने निजी पुरुषार्थ की बात है, क्योंकि बाबा ने हम सबको यही कहा कि समय परिवर्तन के साथ साथ अभी हमें अपने आप को भी परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए विशेष हम सबको मधुबन बाबा के पास आते हैं तो एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिल जाता है, एकांतवास, मनन चिंतन और साथ में ज्ञान का कंठा, कि रोज भिन्न भिन्न प्रकार से बाबा हम सबको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारता ही रहता। तो जैसे बच्चे कहते हैं बाबा और बाबा दिल से बच्चों को कहते कि मेरे बच्चे, तो जैसे ही ये दिल से दिल मिल जाती है तो हमारे पास सर्व खजानों का जो भंडार है वो अपने आप क्या हो जाता, खुल जाता है। और ऐसे भंडार के हम सब बाबा के बच्चे मालिक है। पिछले जो भी बाबा की वाणियां चली, जिसमें हर वाणी बाबा की हम सब के लिए शिक्षा स्वरूप रही। बाबा ने कहा कि मैं हर एक बच्चे के मस्तक पर तीन रेखाएं देख रहा हूं। तो पहली रेखा है बाप के रूप से वर्षे की प्राप्ति, है ना। जब हम बाप को अपना बाप, तो बाप के वर्षे के हम अधिकारी बन गए। दूसरी, बाबा ने कहा कि शिक्षक के रूप से श्रेष्ठ शिक्षा का भाग्य, कि इतना बड़ा शिक्षक की दुनिया में किसी का भी नहीं। और तीसरी रेखा बाबा ने हम सब के मस्तक में देखी, सद्गुरु के रूप में वरदानों की प्राप्ति। तो सोचिए, जैसे बाबा त्रिमूर्ति है, तो इस तरह से हम सबको बाबा ने ये तीनों ही प्राप्तियां इस संगम के ऊपर में संपूर्ण रूप से कराई। तो कभी इसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा मनन करें, बाबा नहीं कहता कि बाप कहा और वर्षे के क्या बन गए, हकदार। लेकिन बाप के नाते वर्षे का जो हमें हकदार बनना है, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो बाप हम सबको कौन सी ऐसी श्रीमत देते हैं जिस श्रीमत के आधार से ही जो संगम का जो वर्षा है उसके हम अधिकारी बन सकते हैं। तो आज भी बाबा ने मुरली के बीच हम सबको ये इशारा जरूर दिया कि रोज अपने चार्ट को तुम्हें क्या करना है, चेक करना है। और घर भी चलना है, लेकिन फॉलो फादर, फॉलो मदर और इज्जत से। तो उसके लिए हमें एक अटेंशन बाबा ने हम सबको खिंचवाया, कैसे वर्षे के हकदार हम बाबा के बच्चों को अपने स्व परिवर्तन का जो काम हम सबको दिया है। जैसे हम देखते हैं कि बाहरी दुनिया के हिसाब से भी देखो कि परिवर्तन की जो स्पीड कितनी फास्ट गति से बढ़ रही है, तो इसी तरह से इस ईश्वरीय जीवन, इस ईश्वरीय मार्ग में हमें भी अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए बाबा ने कई शिक्षाएं हम सबको दी है। उस स्पीड से अगर अपने आप को हम जितना मोल्ड करते जाए तो निश्चित ही हम गोल्ड बन ही सकते हैं। तो वो शिक्षा बाबा ने हम सबको दी समय के अनुसार, कि अब समय समाप्ति की ओर जा रहा है, हमें भी अपने आप को अगर समेटना है, तो कहा कि यह व्यर्थ संकल्प यह अपवित्रता का बीज है। इस व्यर्थ संकल्प के, अपवित्रता के बीज को हमें क्या करना पड़ेगा, समाप्त करना होगा। और जब तक इसकी हम अपने आप में अगर समाप्ति नहीं करते हैं, तो बाबा ने जो हम सब के मस्तक पर चमकता हुआ सितारा, जो हम सब के लिए बहुत बड़ी आश बाबा ने रखी है, हमारे इस जीवन के हर कदम में बाबा ने पदम की जो आज हमें विशेष इशारा देते हुए कहा, और हमारे अपने ही इस पुरुषार्थी जीवन का एक लक्ष्य दिया है, तो उस लक्ष्य को हमें प्राप्त करने का आधार ही आज जो बाबा कहता संतुष्टता का मतलब यही है कि जब तक इस व्यर्थ चिंतन से, व्यर्थ संकल्पों से, व्यर्थ विकल्पों से विकर्मों से अपने आप को हम जितना बाबा को साथ लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही ये माया जिसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकेंगे। बाबा कभी ये भी कहता कि माया आप ब्राह्मणों के आगे क्या है, आप तो सभी सर्वशक्तिवान के बच्चे हो। जब आप सर्वशक्तिवान के बच्चे हो तो माया आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। वो आती है हमारा पेपर लेने के लिए। इसलिए इस सीजन की वाणी में बाबा ने बहुत अच्छी बात हम सबको कही कि देखो, एक तरफ अति हलचल का समय और दूसरी तरफ आपकी स्थिति कैसी हो, अचल। और ये जो अचल स्थिति ही बाप की क्या करेंगे, प्रत्यक्षता। माना आपका जो चेहरा जो बाबा ने हम सबको कहा और आपकी जो चलन है वो इसी आधार से संसार के अंदर संसार की आत्माएं आप सबको मानेंगी कि जब आप भी अपने उस अचल स्थिति में सदा ही क्या रहेंगे, स्थिरियम। लेकिन ये स्थिति हमारी तभी बन पाएंगी जिसके लिए बाबा हम सबको और तीन बातें विशेष अपने स्वपुरुषार्थ या सेवा के साथ हम अपने आप को परिवर्तन कर सके या अपनी स्थिति को ऐसी अचल बना सके, तो उसके लिए पहली बात बाबा ने कहा नॉलेजफुल। ये भी कहा कि माया के भी बच्चों में क्या होनी चाहिए, नॉलेज। दूसरा फिर बाबा ने विशेष कहा पावरफुल। और तीसरी बात बाबा हम सबको देता है वह है लवफुल, कि जब अपने आप में हम सभी इस बात का विशेष रूप से अगर ध्यान रखें कि बाबा की उच्चाहना को अगर हमें पूर्ण करना है तो बाबा हम सबको यही कि नॉलेज तो सबके पास है, लेकिन कभी कभी बाबा ये भी कहता है कि समझदार से समझदार बच्चे देखना हो तो कहां देखो और फिर आगे। तो ये जो नॉलेज बाबा ने हम सबको दी वो इसीलिए दी कि जो हम सब जब तक अपने आप में इस आत्माभिमानी स्थिति को, देही अभिमानी स्थिति को इस व्यर्थ संकल्पों के साथ अगर समाप्त नहीं करते हैं तब तक हमारी ये मन मना भव की स्थिति बन नहीं सकती। चाहे हम कितना भी कहे लेकिन जब उसकी नॉलेज के साथ साथ हमारी स्थिति को फिर ये मनसा जो बाबा ने हम सबको काम दिया है कि उसको क्या करना होगा, पावरफुल माना शक्तिशाली। और शक्तिशाली स्थिति ही हमें क्या करती है कि आए हुए विघ्नों को, आई हुई परिस्थिति को, आए हुए समस्याओं को हम सहज क्या कर सकते हैं अपने आप में, कि वो शक्ति है कि जिसको हम सहज पार कर सकते हैं। जिसके लिए बाबा हमेशा कहता है कि बच्चे तुम्हें पत्थर को तोड़ना नहीं है लेकिन क्या करना है, हाई जंप भी नहीं लेकिन अब समय के प्रमाण बाबा ने वो हम सबको काम दिया, खुद भी उड़ना है और औरों को भी क्या करना है, उड़ाना है। लेकिन यह हम उड़ या उड़ा तभी सकते हैं कि सबसे पहले हमारे में सदा के लिए वह सदा उमंग और उत्साह की शक्ति क्या हो, कायम हो। कहा ना ये ब्राह्मण जो जन्म है बाबा ने कहा वो एक सेकंड एक जन्म की हमारी कमाई का साधन है। और ऐसे समय पर बाबा की शिक्षा हम सबको कि बच्चे अपने उमंग और उत्साह को तुम्हें क्या करना नहीं, कभी खत्म नहीं करना, या इस पंखों को कभी क्या नहीं बनाना, कमजोर नहीं करना। लेकिन होता क्या है ना, इस ब्राह्मण जीवन में हर एक हम सब अनुभवी है, और बाबा भी हम सबको हमेशा कहता कि हम सब बच्चे कैसे हैं नंबरवार। क्यों बाबा कहता? क्योंकि चलते चलते देखो, हम नए होते हैं, शुरू में आते हैं, तो बड़ा हमें उमंग और उत्साह होता है, और हर एक जो भी हमारे सामने आए उस आत्मा के हमारी जो दृष्टि है वो उनके गुणों पर जाती है, विशेषताओं पर जाती है। धीरे धीरे फिर बाबा ने कहा कि हम नीचे आते अपने स्वस्थिति से, तो कहीं किसी से कुछ अगर ऊपर नीचे होता है, कुछ थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, तो हमारी नजर फिर किस पर जाती है? तो उस हिसाब से बाबा ने हम सबको पिछले मुरलियों में बहुत अच्छी बातें हम सबको शिक्षा के रूप में समझाई, क्योंकि बाप शिक्षक के नाते जो हमारा श्रेष्ठ भाग्य हम सबको मिला है कि बच्चे ये तुम्हारा परिवार है, और परिवार के नाते हम सब जानते हैं कि अगर किसी बच्चे में कोई आपके कोई कमी या कमजोरी हो तो आप भले उसको अंदर से शिक्षा जरूर देंगे, नहीं है ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन बाहर कभी उसके कमियों का क्या नहीं करेंगे, वर्णन नहीं करेंगे। इसलिए बाबा ने भी हम सबको यह काम दिया है, वो शिक्षा हम सबको दी है कि उन गलतियों को न देख उनको क्या करना है। तो उनके लिए बाबा हम सबको यही कहता, एक तो उनको श्रेष्ठ सहयोग दो अगर दे सकते हो तो, या उस आत्मा के प्रति सदा तुम्हारी शुभ भावना हो, और तीसरी बात बाबा ने कहा सदा उस आत्मा के प्रति तुम्हारी क्या हो, शुभ कामना हो, क्योंकि भावना बहुत काम करती है। देखो आप सभी हम सभी अनुभवी है, भक्ति में भी आज जो हम भक्ति करते थे जिसकी भी, तो वहां भी हमारी भावनाएं होती थी, और उस भावना का बाबा नहीं कहता भले फल देने वाला तो मैं ही हूं, लेकिन जो बच्चे भावना रखते हैं उन भावनाओं का मैं क्या देता हूं उनको, भाड़ा, भले अल्प काल क्यों ना हो। तो कहने का भाव कि भक्ति में भी अगर भगवान ने हम सबको भावना का क्या दिया, भाड़ा, और यहां तो अभी हम सब डायरेक्ट किसके बच्चे हैं, उस सर्व शक्तिवान परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। इसलिए हम सबको ये नशा हो कि संसार में हमारे जैसा कोई और नहीं है, इसलिए भगवान की भी हम सबके ऊपर में विशेष नजर भी है, और विशेष हम सबके ऊपर में क्या है, आश भी है। अगर इस तरह से अपने आप में अगर परिवर्तन की, एक अपने में अपने पुरुषार्थ से कि हमें किसी के भी गलतियों को मन में न रखते हुए उसका चिंतन या वर्णन नहीं करना, लेकिन सागर क्या करता है, सबको समा लेता, तो इसी तरह से हम भी बाबा के जो बच्चे हैं, बाबा ने हम सबको वरदान दिया है कि आप सभी भी कौन हो, हर गुणों के मास्टर हो। तो ऐसी पावरफुल हमारी अगर मनसा, अपने आप में अगर हम लक्ष्य रखते हुए बना ले, और उसके लिए विशेष बाबा हम सबको ये लक्ष्य देता है कैसी पावरफुल मनसा नॉलेज के साथ साथ हमारी तभी बन सकती है जब इस ब्राह्मण जीवन का पहला फाउंडेशन बाबा ने याद कराया, वह है अमृत वेला। अगर इस अमृत वेले का महत्व अगर अपने आप में हम रखते हैं तो बाबा नहीं कहता या तो अमृत वेला या तो मृत वेला, अगर हम सोए रहे तो क्या हुए। और इतनी बड़ी महान शक्ति हम सबके झोली भरने के लिए बाबन ने उस दिन कहा कि अमेरिका से आए तो भी आपकी इस दुनिया से आए, लेकिन बाबा कहाँ से आता है? हाँ, परम धाम से आते हैं। और ऐसे बाबा हम सबकी जो झोली भरने के लिए आया है, तो झोली भरने का जो समय है दुनिया में भी आप सब जानते हैं, आप सभी अनुभवी है। अगर आपको कहीं कलेक्टर, कमिश्नर या किन्हीं मंत्री किसी से भी अगर मिलने की अपॉइंटमेंट लेनी है तो उनका विशेष समय होता है, वो समय के अनुसार ही आप जाकर के क्या कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, अपना वार्तालाप, अपना काम कर सकते हैं। तो इसी तरह से बाबा ने भी हम सब ब्राह्मण बच्चों को समय दिया है, कहा ना वरदान सद्गुरु के रूप में, और वो वरदानों की बोछावर वो हमारे पर वो समय है, वो है अमृत वेला, जो आज इस बात का विशेष अपने आप में अंडरलाइन, वो कभी ईश्वरीय खजानों से या वरदानों से या प्राप्तियों से कभी भी वंचित नहीं रह सकता। जो भगवान की आज्ञा उसका पालन करता है, तो भगवान भी कहा ना जिसके ऊपर अगर राजी हो जाए, तो वैसे भी कहावत में कहते कि उनके लिए छप्पर फाड़ करके भी क्या करता है, वो देता रहता है। तो ऐसे वरदानों से हम सबकी झोली भरने के लिए बाबा ने हम सबको जो समय दिया है, ऐसे वरदानी मूर्त बनने की जो शक्ति हमें प्रदान की है, उस शक्ति को, और उस समय भी बाबा ने हम सबको कहा कि हमारी जो बैठक किस तरह से हो, यूं ही उठे गुड मॉर्निंग की और फिर नींद के झोंके में अगर पूरा समय बीत गया तो हम कहेंगे कि हमारे में वो ताकत क्यों नहीं, वह शक्ति क्यों नहीं, वह वरदान क्यों नहीं, वो हमारी कमी है। उस समय बाबा हम सबको यही कहता है कि तुम्हारा वह स्वरूप हो जो लाइट माइट स्वरूप। कभी बाबा ये भी हम सबको कहता है कि संसार की इतनी दुखी और अशांत आत्माओं की पुकार आपको सुनाई नहीं देती है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा वर्ल्ड जहां बाहा पसार कर हम सब बच्चों को शक्तियों से भरपूर कर रहा, वरदान दे रहा, तो कभी बाबा हम सबको कहता कि इस अर्थ से माना इस फर्श से आप भी क्या हो जाओ, फर्श निवासी फरिश्ता बन जाओ और मेरे पास आ जाओ। और आप भी बाबा सबको कहता कि देखो कल्प वृक्ष आप सबने देखा होगा, जिसके नीचे जो तपस्वी हमारे मम्मा बाबा अन्य दादिया दादे इतने सारे रथी महारथी बाबा के जो बच्चे हैं, तो बाबा ने कहा कि आप सभी इस कल्प वृक्ष के कौन हो, पूर्वज भी हो तो साथ में पुज्य भी हो। कि वो स्वरूप अगर अपना हम अपने आप में अगर इमर्ज कर ले, कहा ना नॉलेज सिर्फ नॉलेज नहीं लेकिन उसका अनुभव ये सबसे बड़ी शक्ति है। तो बाबा भिन्न भिन्न रूप से रोज अगर एक ही चीज आप खाते रहो आपको मजा नहीं आएगी, भोजन में भी आप सभी क्या चाहते हो, वैरायटी चाहते हो ना। तो ऐसी बाबा भी हम सबको योग की विधियां तो कितने भिन्न भिन्न प्रकार से हम सबको सिखाई, लेकिन उसको यूज करके उसका अनुभव करना और उस अनुभव में खो जाना। और लास्ट बाबा ने यही कहा कि दुनिया आपसे अभी नॉलेज नहीं चाहेंगी, दुनिया आपसे आपके जीवन के अनुभव की खान चाहेगी। और ऐसा अनुभव का एक सुंदर खजानों की जो खान जो बाबा हम सबके ऊपर में बरसा रहा है, और ऐसे समय का अगर महत्व अपने जीवन में नहीं तो बाबा ने कहा वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है कि अमृत वेले से लेकर रात तक देवी दिनचर्या के अनुसार बाबा के हर श्रीमत को कदम कदम पर क्या करना, फॉलो करना। तब बाबा ने कहा हर बच्चों के कदम में क्या कहा, पदम शब्द बोला। और ऐसी जो शक्ति है बाबा से हम ले सकते हैं। और ये शक्ति लेने का स्रोत कि जब हम अपने दादियों को, मधुबन को, बेहद सारे बाबा के ऐसे विशेष विशेष जो रतन आप सब देखते हो कि जिनके मस्तक से, जिनके चेहरे से, जिनके दृष्टि से कि सारे ये सृष्टि का माहौल आज जो परिवर्तन हो रहा है, तो बाबा हम सबको कहता कि ये हरेक ब्राह्मण बच्चे की क्या है, जवाबदारी है, जिम्मेवारी है। लेकिन ये अमृत वेले के महत्व के लिए हमें अपने जीवन में बाबा के साथ तीसरी बात क्या चाहिए, लव। अगर बाबा के साथ प्यार होगा उतना लव होगा, तो देखिए जहां प्यार होता है तो प्यार के लिए कुर्बानी कोई बड़ी बात नहीं होती। तो भगवान के ऊपर हम सबकी जो कुर्बानी, उसके लिए हमारा दिल का क्या चाहिए, लव। बाबा ने कहा कि मैं तीन तख्त बाबा देखता है कि एक आत्मरूपी तख्त, दूसरा है बाप दादा का दिल तख्त, और तीसरा बाबा क्या देखता हम सब में, विश्व का तख्त। तो दिल तख्त के अधिकारी वही बच्चे बन सकते हैं जिन्होंने अपने दिल पर बाप दादा को बिठाया, जिसने अपने दिल को बाप दादा का क्या बनाया, दिल तख्त बनाया। ऐसा दिल तख्त अगर बाबा को हम अपने आप में अगर बना ले, तो आप कभी अनुभव करना, हम तो इस ईश्वरी मार्ग में कदम कदम पर वो बाबा की अनुभूति हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अंग बनती कि जो भी बातें आती है, समस्या आती है, परिस्थिति आती है, बैरियर्स हमारे जीवन में खड़े हो जाते हैं, वो इतने इजी रूप से हट जाते जो आपको भी पता नहीं पड़ेगा कि इतना बड़ा बल, इतनी बड़ी शक्ति उस बाबा की। बस बाबा को अपने दिल पर बिठाना, उसको दिलाराम समझकर उसको अपने दिल को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना, तो ऐसे बच्चों के आगे बाबा भी कहता जहां प्रकृति पति को जिन्होंने अपना बनाया, उसके आगे प्रकृति भी क्या देती है, साथ देती है। बातें होगी तब तो बाबा ने कहा बातों को नहीं देखो लेकिन किसको देखो, हाँ किसको देखो, आप सब अनुभवी है, बाप को देखो। बाबा ने कहा बाप को क्यों देखो, कभी हो सकता है कभी उतावले रूप में कोई बात की अगर हमारे से जजमेंट अगर रॉन्ग हो जाए, तो सारी ही लाइफ, सारी ही जीवन शिवाय पश्चाताप हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए हमारी आदरणीय दादी जानकी जी हमेशा हम सबको ये शिक्षा देती है कि पहला है शांति, दूसरा है धीरज, और आज बाबा ने तीसरी बात हम सबको दी, संतुष्टता। कि कोई भी चीज के लिए, कल भी हम हमारी आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी हम सबसे मिल रही थी, तो दादी जी ने हम सबको यही प्रश्न पूछा कि सर्व गुणों को या सर्व खजानों को अपने आप में अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए किस गुण की आवश्यकता है, या बाबा की हम सबके लिए चाहना है कि समय के अनुसार हर एक ब्राह्मण अभी संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करे। तो दादी जी ने हमको यही कहा कि सबसे बड़ा गुण है शांति का गुण, है ना। जहां लव है, जहां प्रेम है, तो वहां ऑटोमेटिकली क्या आ जाती है, दिल शांत हो जाता है। और शांति की शक्ति जिसको हम अपने आप में अगर अपना लेते हैं, तो हमारे से जो भी होने वाले कोई ऐसी बात या विकर्म, कोई ऐसी परिस्थिति, तो उसको हम सहज क्या कर सकते हैं। इसलिए दुनिया में भी लोगों ने मौन का महत्व रखा था, वो तो सिर्फ मुख के मौन की बात कहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा चलो मुख से तो मौन कर लेते हैं लेकिन मन के संकल्पों के हलचल तो उससे तो वो परे हो ही नहीं सकते हैं। और बाबा हम सबको वो काम कि बच्चे मुख के मौन के साथ, तो सबसे पहला हमारा मौन कौन सा है? अपने संकल्प शक्ति का। और संकल्प शक्ति की वो बहुत बड़ी बाबा ने हम सबको कैटेगरी या महत्व दिया है कि एक तो हमारा जो संकल्प हो वो व्यर्थ अगर है तो व्यर्थ संकल्पों की शक्ति क्या करती है। जैसे आज रात को आप पानी टाके से भर देते हैं, टाका पानी से, अगर उसको थोड़ी सी सुराग है तो सारी रात भरा हुआ जो टाका है दिन में आप उठ करके अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो खाली हो जाएगा। ऐसा व्यर्थ संकल्प भी हमारी इस ब्राह्मण जीवन में ये बुद्धि को एक बहुत बड़ी क्या है? सुराग है। इसलिए धीरे धीरे वह शक्तियां हमारे से क्या हो जाती है। फिर हम कहते हैं कि वे शुरू में आए हमें बहुत नशा था, बहुत उमंग था, लेकिन आज धीरे 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 हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे में यह आज जो उमंग होना चाहिए, जो उत्साह होना चाहिए, जो बाबा ने हमें कार्य दिया है उस कार्य करने की हमारे में जो शक्ति होनी चाहिए, तो उसका कारण और उसका निवारण तो बाबा हर बात की। इसलिए चेकिंग का मतलब बाबा का यही है कि सारे दिन के दिनचर्या में हम अपने आप के अपने ही उस संकल्पों को अगर अच्छी तरह से कि हमारे में जो संकल्प चल रहे हैं वो साधारण कितने हैं, व्यर्थ कितने हैं, और जो हम कहते हैं ना विकल्पों का रूप लेकर कहां हमारी शक्तियों को क्या करती है? वेस्ट करती है। लेकिन जब हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो हर बच्चे को ये जरूर होता है कि हमें बाबा का नाम अगर रोशन करना है, बाबा के इस कार्य में अगर अच्छी तरह से हमें सहयोग, जिसको बाबा नहीं कहता, मनसा भी हो, दूसरी वाचा भी हो और तीसरा कर्मना भी हो, लेकिन ये तीनों तभी हम बाबा को इस कार्य के साथ हम दे सकते हैं जब हमारी इस मनसा शक्ति के संकल्पों का महत्व अगर हम समझ ले तो हम सहज ही क्या कर सकते हैं कि उन शक्तियों को, उन प्राप्तियों को, उस अधिकार को अपने जीवन में यहां ही अनुभव कर सकते हैं। और इतना अपने आप में अगर हम एक शक्तिशाली बन पाते हैं, जैसे एक छोटी सी बात याद आती है, एक बुजुर्ग माता थी लेकिन बहुत भक्तन थी, माना ईश्वर की आराधना और उसका ईश्वर से अपना अपने रूप से प्यार। तो जब उसका मृत्यु का समय आया और काल जब उसको लेने के लिए आया तो जब उसके पास पहुंचा और उसको कहा कि अभी आपको चलना है, तो उस बुजुर्ग माता जी ने कहा ठीक है मैं चलने के लिए जरूर तैयार हूं, लेकिन एक बात, आप कल आना। उसने क्या कहा? कल आना। और वही अपना बोर्ड अपने घर के बाहर में लगा दिया कि जब जब काल वहां आता था और वो बात पड़ता था, कौन सी बात? कल आना, कल आना, तो कल कभी। और वो काल पर उसने क्या पाया? विजय पाई। हम भी बाबा के बच्चे, बाबा ने कहा कि तुम भी क्या कर सकते हो, इस काल के ऊपर में विजयी बन सकते हो, लेकिन वही बच्चे विजय को प्राप्त कर सकेंगे कि जो बच्चे, बाबा ने कहता, प्रकृति जीत हो, विकर्मा जीत हो, आज विकल्पों के ऊपर में जिसकी जीत हो वही क्या बन सकेंगे? माया जीत, और वही बन सकेंगे जगत जीत। यहां तक कि उनका सीमित नहीं होगा, कैसे बच्चों को बाबा के द्वारा वो वरदान प्राप्त होगा, वो होगे बेफिक्र बादशाह। मना कोई बात की उनके जीवन में क्या नहीं होगी, बाबा ने कहा पुरुषार्थ की, अच्छी बात की, बाबा ने जो हमें काम दिया उसकी, लेकिन वेस्ट जिसको हम अपने आप में या व्यर्थ के रूप में आज अगर उसको हम वेस्ट करते रहते, तो आज जो वेस्ट गया हुआ संगम का या सुहावना समय पुनश्च कभी लौट कर नहीं आएगा। कल कभी याद रखे कि कल कभी होगा नहीं, क्योंकि ये काल चक्र के अनुसार बाबा ने हम सबको ये भी कहा कि संगम पर जो आपने किया सो कलप कलप क्या होगा। इसलिए इसी समय हमें बाबा के द्वारा अपने पार्ट को इतना अच्छी तरह से और बाबा के श्रीमत अनुसार अगर हम बनाकर, और आज जो बाबा ने हमें परिवर्तन की बात जो कही है उसको अगर हम लेकर चलते हैं, तो निश्चित आज हमारा जो परिवर्तन का अर्थ ही है, परि प्लस हम कहते हैं ना वर्तन, माना परि जैसा वर्तन, माना फरिश्ता स्वरूप की हमारे जीवन की क्या है वह अनुभूति। और ऐसे जो अनुभवी हम बाबा के जो रतन, बाबा ने कहता देखो आज हमारी दादियों के आगे जो लाइन, एक एक वाक्य के लिए हम सब क्या होते हैं, तरसते हैं, एक एक दृष्टि के लिए हम तरसते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप में लंबे समय से वो तपस्वी बल की शक्ति और बाबा का जो सानिध्य है, जो बाबा की शिक्षाएं और बाबा के द्वारा मिली हुई श्रीमत उसके आधार से आज वो शक्ति अपने जीवन में प्राप्त की। माना यहां तक हम भी अपने जीवन का, अभी अभी दीपावली के समय पर हम सभी दादियों को फोन करते, तुम्हारी आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी को हमने जब फोन किया और दादी को दीपावली की हमने सबने सभी भाई बहनों के तरफ से जब याद और उनको शुभकामनाएं दी, तो जैसे ही मैं बोल रही थी, पता नहीं सभी बहनों को क्लास में भी मैंने अनुभव सुनाया, तो उस फोन से ही जैसे मुझे एक शक्ति की किरणें, शक्ति का आभास, और इतना अपने आप में ऐसा उमंग, पता नहीं बात फोन से हो रही थी, कितना लंबा रास्ता, लेकिन फिर भी देखो उन आत्मा के जो वाइब्रेशंस है, वो दादी जी के जो वाइब्रेशंस है, वो हमें सबको क्या कर रहे थे, अनुभव करा रहे थे। तो इसी तरह से बाबा ने कहा आगे चलकर ये सेवा होगी। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे हमने अभी अभी अपने दादी जी के द्वारा जो अनुभव किया, ऐसे बाबा ने कहा हम सब के द्वारा भी अनेक आत्माएं क्या चाहती है, ऐसा अनुभव चाहती है। लेकिन इस अनुभव की जो शक्ति को हम सभी को प्राप्त कराने के लिए बाबा ने तो हम सबको लंबे समय से ये बात का अटेंशन जरूर दिया कि बच्चे इस बात का ध्यान रखना, अचानक है ना दादी, आदरणीय दादी चंद्रमणि जी जब दादी, तो उस समय बाबा ने यह संदेश दिया अचानक का पार्ट और दूसरा एवर रेडी का पार्ट। तो हम सबको भी अपनी इस बैगेज को क्या करना पड़ेगा, तैयार तो रखना ही होगा। अगर हम समय पर कहेंगे तो बाबा तो यही कहेगा कि मैंने तो पहले से ही आपको इस बात की क्या दी थी, पहले ही कि कोई ऐसी बात नहीं जो बाबा ने हम सबको इशारा नहीं दिया। उस अनुसार अगर हम अपने आप में ये नशा, ये खुशी कि ऐसी जो शिक्षा है, ऐसे जो वरदान है, ऐसा जो श्रेष्ठ वर्षा है जो सारे कल्प में हमें कभी नहीं मिलेगा, इस तरह से हमें बाप के द्वारा इस संगम युग के इस सुहावने समय पर मिल रहा है। और ये भी बाबा कभी हम सबको कहता है कि हो सकता है कि समय या ड्रामा कभी इस परिवर्तन के बटन को दबाए, एवर रेडी हो अचानक के समय पर, लेकिन इस एवर रेडी या अचानक ड्रामा उस बटन को दबाए उसके लिए बाबा ने ये भी हम सबको कहा कि इसकी तैयारी के लिए कौन चाहिए। एक तो हमें अधिकारी बच्चे माना पूर्ण रूप से, दूसरा रॉयल फैमिली और तीसरी रॉयल प्रजा। ऐसे तीनों ही रूप से जब ये बच्चे बाबा ने कहा तैयार होंगे तब ये ड्रामा भी क्या करेगा, परिवर्तन का पर्दा खोल देगा। और जिस समय वो पर्दा अगर खुल जाए, अगर हम अपने आप में रेडी नहीं होगे, तो बाबा ने कहा ये इस कलप की बात नहीं होगी, लेकिन कलप कलप की बात होगी। तो इस तरह से कभी हम एकांत में बैठ करके उस बात का क्या करें, मनन चिंतन करें, विचार सागर मंथन करें। जैसे गाय क्या करती है, चारा खाती है, फिर बैठ करके क्या करती, उसको अच्छी तरह से एकांत में उगारती है। अगर वो उगारती नहीं है तो आप जानते हैं, समझते हैं कि भाई इसको कुछ क्या है, कोई बीमारी तो नहीं। इस तरह से बाबा भी हम सब के आगे जो इतना ज्ञान का खजाना, ज्ञान का भंडार रोज की मुरली हम सबको बाबा देता है, तो बाबा क्या कहता, मुरली सुनो। और मुरली सुनने के बाद क्या करो, उसका उठ करके जाते हो तो रास्ते चलते ये एक अपना अनुभव अपने पास कभी रखना कि मनन चिंतन, और वो मनन चिंतन के साथ जो भी आत्मा, जो भी आपके समन संपर्क वाले कहीं, तो अपने आप आपके मुख से बाबा का कोई ना कोई उनको क्या मिलेगा, ज्ञान का खजाना मिलेगा। हो सकता बाबा ने कहा कोई बच्चा अगर बाबा का बनने वाला हो तो उसका भी क्या हो जाएगा, उद्धार। तो कहने का भाव बाबा का यही है कि समय परिवर्तन के साथ साथ, जैसे यज्ञ भी परिवर्तन की ओर, इसी तरह से अभी हमारी अपनी स्वस्थिति को भी इतना ही अच्छी तरह से बना करके रखना होगा। और बाबा ने कहा एक साथ सभी प्रकार के पेपर हम सबके सामने हो गए, अपने भी पुराने संस्कार, बाबा ने कहा समय के ऊपर में क्या खाएंगे, उथल खाएंगे, वो भी छोड़ेंगे नहीं। दूसरा हमारा रहा हुआ अपना ही शरीर का कर्म भोग, माना हिसाब किताब, क्योंकि आज का हिसाब किताब नहीं है हमारे साथ, कितने जन्मों का अपना, 63। तीसरा फिर बाबा ने कहा इविल स्प्रिट, वो भी अपना, क्योंकि इतने लोग एक साथ, देखो भूकंप होता है, कहीं बाढ़ आती है, कहीं कुछ हो जाता, तो लाखों करोड़ों एक साथ जब यहां से, तो उन आत्माओं को जन्म तो नहीं मिलेगा, वो कहां, इसी आकाश तत्व के अंदर में क्या करती है। ये भी बाबा हम सब ब्राह्मणों को इशारा देते, ये नहीं कहना कि ब्राह्मण उससे छूट जाएंगे, अगर कमजोर होंगे तो वो भी उस घेराव में कभी क्या हो सकते, आ सकते। इसके लिए बाबा की हम सबको यही शिक्षा या सावधानी है कि हमें अपने आप को इतना अचल हलचल के बीच जो बनाने का भाव यही है कि यह सब परिस्थितियां हमारे सामने, क्योंकि ये प्रकृति भी हमारा पेपर चारों तरफ तो अभी देख रहे हैं, तो ऐसे चारों प्रकार से और चारों ही आज परिस्थितियां हम सबके सामने अगर विकराल रूप लेकर खड़ी हो जाए, तो ऐसे समय पर हम सबका जो साथ देने वाला जो साथी है वो कोई आपका साथी नहीं रहेगा, वो कौन रहेगा, सर्व शक्तिवान बाप। तो इसीलिए हम पहले से ही, माना शुरू से ही हम ऐसे बाप को अपना साथी रख करके क्या करें, साथ निभाते चले, तो अंत समय बाबा भी कहता मैं साथ देने के लिए क्या रहूंगा, तैयार। और ऐसे जब कंबाइंड रूप होकर के अगर हम चलेंगे तो देखो सामने से अगर गाड़ी आती है तो गाड़ी के जो फोकस पावरफुल लाइट्स होते हैं तो पीछे की बॉडी कभी दिखाई नहीं देती है, इसलिए एक्सीडेंट्स रात के समय पर ज्यादा से ज्यादा, ये सारा सिलसिला कारण। तो इसी तरह से बाबा जो अमृत बेला जो आपको मैंने कहा लाइट माइट, ये इसीलिए कहा कि स्वरूप से अगर अपने आप में अगर हम शक्तिशाली होकर के रहेंगे तो ये मायावी प्रभाव हमें विचलित कर नहीं पाएगा, मन उसको हमारे द्वारा लाइट या प्रकाश में वो शक्तिशाली रूप कि जिससे वो हमारे पर क्या नहीं कर सकती है, वार। इतनी बड़ी जो पावर है, इतनी बड़ी जो शक्ति है, वो इस योग साधना में है, अमृत वेले के तपस्या में है। और वह सानिध्य व शक्ति हमें क्या करती है, कभी भी किसी भी रूप से अपनी स्थिति में कभी क्या नहीं होने देती, डगमग, या कभी शक्तिहीन। यहां तक जो आपकी जो शक्ति है, मन आपके जो वाइब्रेशन से, जिस स्थान पर आप रहते हो, जिस परिवार में आप रहते हो, जिनके साथ रहते हैं, जो आपके सानिध्य में है, बाबा नहीं कहता कि ऐसे फरिश्ते अनेकों के क्या बन सकते हैं, रक्षक। माना आपके द्वारा अनेकों की क्या हो सकेंगी, रक्षा। वो पवित्र वाइब्रेशन, शक्तिशाली वाइब्रेशन, प्योर वाइब्रेशंस आज आपके घर परिवार को भी क्या कर सकेंगी, बहुत बड़ी मदद दे सकेंगी। इसलिए हम सभी अनुभवी है, हम कहते थे ना, साधु संत एति घरा तोची, क्या कहते थे, दिवाड़ी। तो कहने का भाव, ऐसी जो पवित्र शक्तिशाली आत्माएं अपने घरों में कदम रखने के लिए जो हम इंतजार करते थे, अपने बच्चों को दृष्टि या उसके सिर पर हाथ घुमाए या कोई एक वचन या दो वचन बोले, और आज तो बाबा कहते आपको तो कौन मिला, सर्व शक्तियों का, सर्व वरदानों का, सर्व प्राप्तियों का स्रोत, जो इतनी बड़ी पावर्स, इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी अथॉरिटी, जिसके आज हम सब कौन है, मालिक है। देखो बाबा का अगर देखे तो बाबा पर कितना प्यार आता है, बाबा ने कहा, बच्चों ने कहा और बाप मिलने के लिए आ गया, तो ये कम प्यार नहीं है, इतना प्यार। हम कहते हैं ना भाई, करेगा कौन, कोई कर सकता, अपने भी माँ बाप होते वो भी छोड़कर चले जाते हैं, है ना, बाकी की तो रिश्ते नाते छोड़ो, लेकिन बाप हमें वो वायदा करता है कि बच्चे मैं तुम्हें क्या करूंगा, अपने साथ, आज चाहे आप अकेले में क्यों ना हो, लेकिन मैं सदा साथ देने के लिए बंधा है। पीछे नहीं बाबा ने कहा कि आप दिल से कहो, मेरे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, और बाबा हाजिर। तो ऐसी जब शक्ति, ऐसा जब वरदान, ऐसी जब प्राप्ति उस परमपिता परमात्मा शिव बाबा से, जो आज आगे से होकर हमको देने के लिए तैयार। हम तो भक्ति में मंदिरों में जाकर शिव के आगे क्या करते थे, बेल फूल, कितनी उसकी पूजा, कितना उसका तप, लेकिन रहा वही। आज भक्ति का फल भगवान हम सबको कहाँ मिला, डायरेक्ट। इसलिए बाबा ने कहा कि ऐसी संतुष्ट मनियों को अगर कोई पूछे तो हमारे मुख से, हमारे दिल से यही निकले, कौन सी बात, पाना था सो पा लिया। हमारे चेहरे से, हमारे चलन से, हमारे अंदर की स्थिति से, जिसके सानिध्य में रहते हैं, आज कुछ पाने की हमारे में क्या नहीं रही, तमन्ना। तो ऐसी जो चमत्कारिक जीवन इस संगम की हम सबको बाबा ने जो भर भर करके दी है, हम सबको बाबा ने इतने सारे वरदानों से, इतने खजानों से, शक्तियों से हमें भरपूर किया है, तो हम कहते ना, ऐसे हम कई जन्म ले तो भी इसका रिटर्न कर नहीं सकते। फिर भी हम अहो भाग्यशाली तो क्या, लेकिन बाबा ने कहता पद्मा पदम भाग्यशाली है, कि इन आंखों ने, इस शरीर ने आज हमें किससे मिला दिया, भगवान से मिला दिया। और भगवान हमें वर्षा, वरदान और ज्ञान की पराकाष्ठा से, कोई ऐसी हमारे जीवन में हम ये नहीं कह सकते आज उसका ही प्रमाण हमारी दादियां, हमारी जो मुख्य मुख्य बहनें, दादे सब, कितना हम सबको क्या कर रहे, मेहनत, कितना प्यार लुटा रहे, कितनी हम सबको आज दृष्टि से, चलते फिरते, हर तरह के वाइब्रेशन से हमें शक्तिशाली बना रहे हैं। तो बाबा भी कहता कि ऐसे सुहावने समय का हम सबको क्या लेना चाहिए, और भगवान कभी किसी का क्या नहीं करता, रखता नहीं, देगा भर भर के। बात है। कहते गुरु था और एक चला, वो रास्ते चल रहे थे, चलते चलते अंधियारी रात हो गई। तो रात होने के कारण उन्होंने सोचा और आगे जाएंगे तो हो सकता हमें कोई स्थान मिले या नहीं मिले। तो एक बड़े साहूकार की कोठी थी, उस कोठी को देखा और उनको लगा हो सकता ये साहूकार हमें थोड़ी सी जगह दे, स्थान दे। लेकिन वो बहुत दिल से क्या था, कंजूस था। लेकिन जब वो देखा गुरु और शिष्य आए और शिष्य ने उसको बोला ठीक है, तो उसने ऐसी टूटी फूटी कोई ऐसी छोटी सी स्थान था उनको उसने दे दिया। चलो रात उनको गुजारना था, न पानी पूछा न खाना पूछा न उनको सोने के लिए। तो चला तो बेचारा सोचता रहा, लेकिन गुरु तो समझदार था, वो तो थोड़ा सा सोया, ये तो जागता रहा। जागने के बाद जब उसकी नींद खुली तो देखा कि गुरु क्या कर रहा है। तो एक खंबा था सारा टूटा फूटा हुआ आजू बाजू में, तो उसको थोड़ी सी दिव्य दृष्टि होगी तो उसने वहां बहुत सारे खजाने देखे होंगे, हीरे रतन कुछ निकाल कर रखे और कुछ जहां मिट्टी कुछ ये पड़ी हुई थी पानी वगैरह, वो लेकर के उसको लिपा करके पूरा करके ढक करके छोड़ दिया। तो दिन निकला तो उन्होंने गुरु ने मना चल पड़े वो। तो शिष्य ने गुरु को पूछा कि इसने तो कुछ भी आपको स्थान नहीं दिया, कुछ पूछा नहीं, फिर भी इसके घर की आपने मरम्मत करके उस खंबे को अच्छी तरह से लिपा करके और आप आगे चल पड़े, क्या बात है। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर आगे थोड़े से गए तो एक व्यक्ति मिला उनको, बहुत गरीब था लेकिन मन से बहुत ही सबके प्रति, इंसान के प्रति उसके मन में दया भाव प्रेम। तो उस रात हो गई, फिर उन्होंने वही बात उनको कही कि अभी रात हो गई है, हमको सोना है, थोड़ी सी आप जगह देंगे। तो बेचारे इतने गरीब, तो उन्होंने अपनी खटिया खुद उनको दी, खुद नीचे सोए। रात भर सोने के बाद जैसे दिन निकला तो उनके घर में कोई भैंस थी जिस दूध निकाल करके वो अपने घर को चलाते थे, तो अचानक वो मर गई। तो गुरु को उन्होंने आकर के बोला, वह चले ने भी कहा, तो उसने कहा चलो ठीक है जाने दो, जो हो गया सो ठीक, और वो निकल पड़े। तब वो चले ने पूछा कि उसने आपको कुछ जगह स्थान या न पूछा तो भी उसकी आपने ये सेवा की, और इसने इतना अच्छा स्थान देने के बाद भी आपने उसके लिए कुछ नहीं कहा। तो उसने कहा जो मैंने किया वो आपको नहीं पता, जो भी हीरे मैंने वहां से वहां, ये बात मैंने इसीलिए की कि इतने सारे हीरे रतन वो व्यापारी को पता नहीं था, अगर वो निकाल करके फिर उसको यूज करता था तो उसका दिमाग और भी क्या हो जाता था, खराब हो जाता था। लेकिन ये बेचारा गरीब था, तो जो मैंने हीरे लाए थे जब वो सुबह उठेगा और अपनी खटिया उठाएगा तो उसके नीचे उसको हीरे जवाहरात मिलेंगे ताकि वो जिंदगी भर आराम से क्या कर सके, खा सके। तो कहने का भाव यही है कि देखो बाबा भी हम सबको जो इशारा दे रहा है कि अपने मन को अपनी स्थिति को किस तरह से बनाना है। और जब ऐसी उदार दिल उदार चित, बाबा ने कहता रहम दिल सबके ऊपर, अगर ऐसी भाव भावनाओं को रखकर आप चलेंगे तो शिव बाबा तो सतगुरु है, वो गुरु क्या देगा। लेकिन वो सतगुरु है कि जो बाबा हम सबको क्या देता है, झोली भर भर करके देता है, इतना देगा कि जो बाबा ने कहता सारा कलप कभी भी हमारा खुटेगा नहीं। अगर इस कलप में जिन्होंने अच्छी तरह से अपने इस लाइफ को इस जीवन को बाबा के खातिर, तो बाबा ने कहता लास्ट जन्म भी उनको अन्य से कैसा रहेगा, है ना। आज भी अगर हमको कुछ खाने के लिए नहीं रहता था सड़क पर भूखे, तो दुनिया तो यही कहते ना पहले पेट पूजा फिर भगवान। और बाबा ने कहा हर ब्राह्मण बच्चे आज भी क्या है, न बहुत हाय न बहुत लो, सब कैसे है मीडियम है। क्यों? क्योंकि ये हमें किए हुए अपने कर्मों का क्या मिला है, बाबा के द्वारा इतना बड़ा बल और एक फल मिला है। तो इसीलिए हम अगर दिल से इस बात को हम अपने आप में अगर अच्छी तरह से लेकर अगर बाबा को साथ रखते हुए रोज की बाबा की दी हुई हम सबको मुरली हम सबके लिए क्या है, एक बहुत बड़ा अपने आप में खजाना है। आप सभी भी अनुभवी होंगे, हम सब भी अनुभवी है, अगर संगठित रूप से अगर बाबा के मुरली को हम नहीं सुनते और जो बाबा ने समय दिया उस अनुसार अगर नहीं करते, तो आप सबको हम सबको ये अनुभव है कैसा लगता है कि हमने बहुत कुछ क्या किया है, आज के दिन खोया है। तो आज ऐसे खजानों की जब खान, वो तो कितने थोड़े से हीरे हैं, और यहाँ तो बाबा क्या करता है, खान भंडार हर तरफ से बच्चों के लिए क्या रखे हैं, उन्होंने खुले रखे हैं। और ऐसी अगर प्राप्ति, ऐसी अगर शक्ति उस परमात्मा शिव से अगर अपने जीवन में हम लेते चलते, ऐसे वरदानों की अपने जीवन में अगर हम प्राप्तियों से अपने आप को अगर हम भरपूर करते हैं, तो कहीं भी हमारी आंख क्या नहीं हो सकती, डूब नहीं सकती, कहीं भी हमारा मन विचलित हो नहीं सकता। और आज वो शक्ति, वो वरदान, हर ब्राह्मण आत्मा उसका क्या है, अधिकारी है। बाबा नहीं कहता चाहे फर्स्ट मन के का पहला माना आज दाना है या लास्ट का है, लेकिन बाबा की सबके ऊपर में नजर कैसी है, समान है। देखो बाबा मुरली यहाँ चलाता, लेकिन बाबा की दृष्टि पहले कहाँ होती, पीछे आगे। क्यों? क्योंकि बाबा हर बच्चे को उस समान स्वरूप और संपन्न स्वरूप से देखते हैं, और उसी तरह से आज हम भी अपने आप में यह लक्ष्य रखें कि हमें अब बाबा की आशाओं को क्या करना है, पूर्ण करना है। आशाओं के जो हम बाबा के, आज बाबा नहीं कहता दीपक हो, तो ऐसे हम दीपकों को बाबा बच्चों को कहता, अभी तो टिमटिमाता है, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो और भी तुम्हें विहंग मार्ग की क्या करनी है, सेवा करनी है। लेकिन वो तभी हो सकती है कि जब अपनी मनसा शक्ति को हम इतना क्या रखे, पावरफुल रखे। जैसे एरोप्लेन के अंदर जो पेट्रोल भरा जाता है वो कौन सा होता, रिफाइन, ये नहीं चलेगा। तभी वो हवाई जहाज क्या लेता है, उड़ान भरता है। तो इसी तरह से हमें भी अपने आप में अगर उड़ान भरनी है, अब समय वो है, किसी को देखने का समय नहीं, किसी के गलतियों को मन पर रखने का समय नहीं, किसी की आज जो भी है उसको सहयोग दो, बाबा ने कहा, उसके लिए शुभ भावना रखो, शुभकामना रखो, और अपने आप में आप आगे बढ़ते रहो। उसके लिए हमेशा कहता कि दुआएं दो और दुआएं लो, ऐसी शक्ति हम बाबा से ले और अपने आप को संपन्न बनाए। इसी के साथ मैं अपने आपको भी, शब्दों को भी क्या देती, विराम, शांति।